एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मतलब एक ऐसे विचारक की जिनके बिना पश्चिमी दुनिया की सोच शायद पूरी तरह अलग होती, अरस्तु यानी एरिस्टोटल।
हाँ, अरस्तु बड़ा नाम है।
बिल्कुल। और इस सफर में हमारा साथी है जोनाथन बार्न्स की किताब एरिस्टोटल अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है ये किताब एक बहुत अच्छा मतलब शुरुआती पॉइंट है अरस्तु की दुनिया में कदम रखने के लिए।
हाँ बिल्कुल, ये जो वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन वाली सीरीज है ये बहुत ही कमाल की है, और अरस्तु पर ये किताब बहुत अच्छी है। और सोचना भी कमाल का है कि लगभग 2500 साल पहले के ये विचार,
2500 साल,
हाँ, वो आज भी कितने काम के हैं, चाहे वो लॉजिक हो, साइंस की बातें हो, सही गलत का फैसला हो, मतलब एथिक्स,
समाज कैसे चले, पॉलिटिक्स,
पॉलिटिक्स, आर्ट्स, हर जगह अरस्तु की छाप दिखती है। बार्न्स की किताब यही दिखाती है कि अरस्तु का जो सोचने का एक सिस्टमैटिक तरीका था ना, वो आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया के लिए भी उतना ही जरूरी है, खासकर जब हम लाइफ के मकसद या चीजों की भूमिका, उनके रोल को समझने की कोशिश करते हैं। ये अरस्तु के लिए बहुत बड़े सवाल थे।
सही बात है। अच्छा, इससे पहले कि हम अरस्तु के विचारों की गहराइयों में उतरें, थोड़ा जोनाथन बार्न्स के बारे में जान लें। ये कौन है जिन्होंने ये किताब लिखी है?
हाँ जरूर। देखिए, जोनाथन बार्न्स कोई मतलब ऐसे ही अकादमिक नहीं है। वो प्राचीन दर्शन, एंशियंट फिलोसफी और खासकर अरस्तु पर उनकी पकड़ जबरदस्त है।
अच्छा।
हाँ, ऑक्सफोर्ड और जिनेवा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं और अरस्तु पर दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स में गिने जाते हैं।
तो मतलब हम एक असली एक्सपर्ट की नजर से अरस्तु को समझ रहे हैं।
बिल्कुल। और उनकी खूबी यह है कि वो बहुत मुश्किल और गहरे दार्शनिक आइडियाज को भी बड़े साफ और दिलचस्प अंदाज में समझा देते हैं, कभी कभी थोड़ी ह्यूमर के साथ भी।
ये तो अच्छी बात है, फिलॉसफी थोड़ी आसान लगे फिर।
हाँ, और उन्होंने अरस्तु के कामों का जो स्टैंडर्ड अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, रिवाइज्ड ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन,
ओ हाँ, वो तो बहुत फेमस है।
हाँ, उसे एडिट भी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी डेप्थ कितनी है। बार्न्स अरस्तु को सिर्फ एक कुर्सी पर बैठकर सोचने वाला दार्शनिक नहीं मानते,
तो क्या मानते हैं?
वो उन्हें पश्चिमी दुनिया का पहला सच्चा साइंटिस्ट कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो दुनिया को बहुत ध्यान से देखता था, ऑब्जर्व करता था, परखता था।
अच्छा, ये बात इस किताब को वाकई खास बनाती है। मतलब ये सिर्फ अरस्तु की बायोग्राफी या उनके अलग अलग आइडियाज की लिस्ट नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। बार्न्स का असली मकसद है अरस्तु से जुड़ा जो एक मिस्ट्री है ना, उसे थोड़ा कम करना। वो दिखाते हैं कि अरस्तु के काम, जो पहली नजर में शायद थोड़े बिखरे हुए लगें,
हाँ, जैसे लॉजिक अलग, बायोलॉजी अलग, पॉलिटिक्स अलग।
वो दिखाते हैं कि ये सब असल में एक बड़े, एक जुड़े हुए इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट का हिस्सा थे।
एक कोहेरेंट प्रोजेक्ट।
हाँ, उनका जो मेन तर्क है बेसिकली वो यही है कि अरस्तु का पूरा प्रोजेक्ट दुनिया को और उसमें इंसान की जगह को समझने की एक ग्रैंड कोशिश थी।
और इसके लिए उन्होंने तरीका क्या अपनाया?
दो चीजों पर जोर दिया, एक तो दुनिया को गौर से देखना, जिसे हम एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और दूसरा उस पर गहराई से लॉजिक के साथ सोचना, यानी रैशनल एनालिसिस। बार्न्स हमें दिखाते हैं कि कैसे अरस्तु ने उन बुनियादी सवालों की नींव रखी जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
तो चलिए देखते हैं बार्न्स हमें अरस्तु की इस सोच की यात्रा पर कैसे ले जाते हैं। हम शायद सीधे चैप्टर बाय चैप्टर ना जाकर उनके कुछ बड़े आइडियाज के ग्रुप्स पर बात करें।
हाँ, वो बेहतर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस औजार की, उस टूल की, जो अरस्तु ने हमें दिया, यानी लॉजिक और सोचने का तरीका।
हाँ, उनका लॉजिक, ये तो बहुत ही फंडामेंटल है।
ये शायद अरस्तु का सबसे बड़ा तोहफा है, फॉर्मल लॉजिक, और उसमें भी सबसे मशहूर चीज है सिलॉगिज्म।
सिलॉगिज्म हिंदी में शायद न्याय वाक्य कहते हैं।
हाँ, कह सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर है बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट। जैसे अगर हम कहें, पहला, सभी इंसान नश्वर हैं,
ठीक है।
दूसरा, सुकरात एक इंसान है, तो नतीजा क्या निकलेगा? जाहिर है, तीसरा, सुकरात नश्वर है।
हाँ, ये तो लॉजिकल है।
बस ये दो बातों, प्रेमिसेस से एक जरूरी नतीजा, कंक्लूजन निकालने का एक पक्का स्ट्रक्चर्ड तरीका है। अरस्तु के लिए ये लॉजिक सिर्फ फिलॉसफी का एक हिस्सा नहीं था,
तो क्या था?
ये ज्ञान की हर खोज के लिए, हर तरह की स्टडी के लिए एक जरूरी औजार था, एक ऑर्गनन। ये उनके बहुत ही सिस्टमैटिक होने का सबूत है, हर चीज को समझने के लिए एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश।
बिल्कुल, सोचने का एक फ्रेमवर्क, और इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल उन्होंने दुनिया को समझने में किया होगा फिर।
एग्जैक्टली। अब आते हैं उनके प्रकृति यानी नेचर, फिजिक्स और उससे भी गहरे सवालों पर, जिन्हें मेटाफिजिक्स कहते हैं।
मेटाफिजिक्स यानी होने का सच क्या है, वास्तविकता क्या है, ये वाले सवाल।
हाँ वही। बांस बताते हैं कि अरस्तु यहाँ अपने गुरु प्लेटो से अलग सोचते थे। प्लेटो मानते थे कि असली चीजें तो आइडियाज की दुनिया में है, फॉर्म्स की दुनिया में। ये दुनिया तो बस एक परछाई है।
प्लेटो के फॉर्म्स।
हाँ, पर अरस्तु ज्यादा जमीन से जुड़े थे। उन्होंने कहा नहीं, असली चीजें तो यही हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये पेड़, ये पत्थर, ये इंसान,
हमारे आसपास की दुनिया।
हाँ, इन्हें उन्होंने पदार्थ कहा। और हर चीज को समझने के लिए उन्होंने एक कमाल का तरीका निकाला, उनके चार कारण।
चार कारण, ये क्या है?
किसी भी चीज को पूरी तरह जानने के लिए अरस्तु कहते थे, चार सवाल पूछो। ये बनी किस चीज से है, यानी मटीरियल कॉज। इसका डिजाइन या रूप क्या है, फॉर्मल कॉज। इसे बनाया किसने या किस चीज ने इसे बदला, एफिशिएंट कॉज।
ओके, और चौथा?
और सबसे जरूरी, इसका मकसद क्या है, इसका टेलोस क्या है, यानी फाइनल कॉज या अंतिम कारण। ये मकसद वाला सवाल, ये टेलियोलॉजी अरस्तु की सोच के बिल्कुल सेंटर में थी।
ये टेलोस या उद्देश्य का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप कह रहे हैं कि हर चीज का एक मकसद है।
हाँ, उनके हिसाब से जैसे एक बलूत के बीज का उद्देश्य या टेलोस है एक बड़ा ओक का पेड़ बनना।
अच्छा,
इसी तरह उन्होंने नेचर में बदलाव को समझाया पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी से। बीज में पेड़ बनने की पोटेंशियलिटी है, और जब वो पेड़ बन जाता है तो वो उसकी एक्चुअलिटी है। ये दुनिया को एक डायनेमिक प्रोसेस के रूप में देखने का तरीका था।
ये तो बहुत गहरा विचार है।
और ये मकसद वाला सवाल सिर्फ चीजों पर ही नहीं रुकता, ये इंसानों पर भी लागू होता है।
हाँ, यहीं से शायद हम उनके साइकोलॉजी, एथिक्स और पॉलिटिक्स के विचारों पर आते हैं।
बिल्कुल। अरस्तु ने डी एनिमा, आत्मा पर नाम की किताब लिखी। ये शायद वेस्टर्न हिस्ट्री में साइकोलॉजी पर पहला सिस्टमैटिक अध्ययन है।
आत्मा पर?
तो क्या वो आत्मा को शरीर से अलग मानते थे?
नहीं, यही तो बात है। उनके लिए आत्मा या साइकी शरीर में बंद कोई भूत नहीं है। वो आत्मा को शरीर का फॉर्म या पहली वास्तविकता कहते हैं, मतलब वो फंक्शनल कैपेसिटी जो किसी जीव को जिंदा बनाती है।
फंक्शनल कैपेसिटी, जैसे जैसे आंख का काम है देखना, देखना आंख की आत्मा है, उसका फंक्शन है। वैसे ही जिंदा शरीर का काम है जीना, महसूस करना, और इंसानों के मामले में सोचना। यह आत्मा है। उन्होंने आत्माओं की एक हायरार्की भी बताई, पौधों में सिर्फ पोषण वाली आत्मा, जानवरों में महसूस करने वाली भी, और इंसानों में तर्क करने वाली आत्मा सबसे ऊपर।
दिलचस्प। तो अगर इंसान की आत्मा में तर्क सबसे ऊपर है, तो यहीं से सवाल उठता है, इंसान के जीवन का मकसद क्या है, उसका टेलोस क्या है?
एग्जैक्टली। और अरस्तु की सबसे मशहूर किताब निकोमेकियन एथिक्स इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। उनका जवाब है यूडिमोनिया।
यूडिमोनिया, इसे अक्सर हैप्पीनेस या खुशी ट्रांसलेट करते हैं, पर शायद ये पूरी बात नहीं है।
हाँ, खुशी शायद थोड़ा हल्का शब्द है इसके लिए। इसका बेहतर मतलब है इंसान का फलना फूलना, अपनी पूरी क्षमता को पाना, एक अच्छा और कामयाब जीवन जीना, ह्यूमन फ्लरिशिंग।
अच्छा, तो ये यूडिमोनिया मिलेगा कैसे? क्या तरीका बताया अरस्तु ने?
वो कहते हैं तर्क के साथ सद्गुण यानी एरेटे का जीवन जीने से। सद्गुण यानी अच्छी आदतें, वर्चूज।
जैसे
हिम्मत, न्याय, संयम, उदारता।
वर्चूज या सद्गुण?
हाँ, और यही उनका वो मशहूर स्वर्णिम मध्य यानी गोल्डन मीन का सिद्धांत आता है।
गोल्डन मीन, ये मैंने सुना है।
हाँ, बहुत फेमस है। हर अच्छी आदत, हर सद्गुण दो बुरी आदतों यानी अवगुणों, वाइसेस के बीच का संतुलन है। एक तरफ एक्सेस, अधिकता, दूसरी तरफ डिफिशिएंसी, कमी।
उदाहरण दे सकते हैं?
बिल्कुल। जैसे हिम्मत, करेज एक सद्गुण है। ये कायरता, कावड़िस यानी डर की अधिकता, और रैशनेस यानी बेवकूफी भरी बहादुरी, डर की कमी, इन दोनों के बीच का सही संतुलन है।
मतलब न बहुत ज्यादा डर, न बिल्कुल बेपरवाही, बीच का रास्ता।
सही। और ये बीच का रास्ता हालात के हिसाब से तय होता है, प्रैक्टिकल विजडम से। ये कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है।
और क्योंकि इंसान अकेले तो रहता नहीं, समाज में रहता है, तो ये बात पॉलिटिक्स से भी जुड़ती होगी।
सीधे जुड़ती है। अरस्तु का वो मशहूर कथन याद है, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, ज़ून पॉलिटिकॉन।
हाँ, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल।
इसका मतलब है कि हम समाज में रहने के लिए बने हैं। हमारा भला, हमारी यूडिमोनिया समाज के भले से जुड़ी हुई है। हम अकेले अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते।
तो फिर पॉलिटिक्स का मकसद क्या हुआ?
पॉलिटिक्स का उद्देश्य अरस्तु के हिसाब से एक ऐसा समाज, पोलिस बनाना है, जहां नागरिक यूडिमोनिया प्राप्त कर सकें। फल फूल सकें, एक अच्छा जीवन जी सकें। उन्होंने अलग अलग तरह की सरकारों का विश्लेषण भी किया, मनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, और उनके बिगड़े हुए रूप भी बताए।
और सबसे अच्छा किसे माना?
प्रैक्टिकल तौर पर उन्होंने पॉलिटी को सबसे अच्छा माना, जो एक तरह का मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी के अच्छे तत्व शामिल थे।
अच्छा, ये तो हो गई एथिक्स और पॉलिटिक्स। उन्होंने कला, आर्ट और बोलने की कला, रेटोरिक पर भी कुछ कहा था।
हाँ बिल्कुल, कला पर उनके विचार भी बहुत गहरे हैं। उन्होंने कहा कला माइमेसिस है, यानी नकल या इमिटेशन।
नकल मतलब सिर्फ कॉपी करना?
नहीं, यही तो कैच है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की नकल नहीं है, ये प्रकृति जिस तरह चीजें बनाती है उस क्रिएटिव प्रोसेस की नकल है, और ये हमें गहरे सच दिखा सकती है।
गहरे सच कला के जरिए?
हाँ, जैसे उन्होंने नाटक, खासकर ट्रेजेडी के बारे में कहा कि उसका मकसद दर्शकों के मन में डर और दया जगाकर उनकी भावनाओं का परिमार्जन करना है, उन्हें शुद्ध करना है। इसे उन्होंने कैथार्सिस कहा।
कैथार्सिस, ये शब्द तो आज भी इस्तेमाल होता है।
होता है। और बोलने की कला यानी रिटोरिक पर भी उन्होंने कमाल का काम किया। किसी को अपनी बात समझाने के लिए, परसुएड करने के लिए उन्होंने तीन चीजें जरूरी बताईं। लोगोस यानी तर्क, लॉजिक। पैथोस यानी सुनने वाले की भावनाएं जगाना, इमोशनल अपील।
ओके।
और एथोस यानी बोलने वाले का चरित्र, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका भरोसा।
लोगोस, पैथोस, एथोस, तर्क, भावना, भरोसा, ये तो आज भी किसी भी अच्छी स्पीच या प्रेजेंटेशन के लिए एकदम जरूरी है।
बिल्कुल, सोचिए 2500 साल पहले की बात आज भी कितनी रेलेवेंट है।
वाकई अरस्तु का दायरा कितना बड़ा था। अच्छा, अगर हम बार्न्स की इस किताब से कुछ खास बातें या की मैसेजेस निकालें तो वो क्या होंगे? मेरे लिए शायद पहली बात है ज्ञान की एकता।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
अरस्तु के लिए फिजिक्स, बायोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब अलग अलग डिब्बे नहीं थे, ये सब मिलकर दुनिया को समझने की एक ही कोशिश का हिस्सा थे।
सब कुछ इंटरकनेक्टेड था।
बिल्कुल।
दूसरा, अनुभव और तर्क का संगम, ये अरस्तु के मेथड की जान है। वो सिर्फ सोचते नहीं रहते थे, बल्कि दुनिया को बहुत ध्यान से देखते भी थे, जानवरों को, पौधों को, इंसानी व्यवहार को।
ऑब्जर्वेशन।
हाँ, ऑब्जर्वेशन, और फिर उस जानकारी पर लॉजिक लगाते थे। ये साइंटिफिक सोच की नींव थी। मुझे लगता है भारत में भी ज्ञान की कई परंपराओं में अनुभव और तर्क दोनों को महत्व दिया गया है। ये कुछ वैसा ही संगम है।
सही। तीसरा पॉइंट मेरे लिए होगा दर्शन का प्रैक्टिकल मकसद।
हाँ,
अरस्तु के लिए फिलॉसफी सिर्फ दिमागी कसरत नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसका असली मकसद था इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना, बेहतर सोच से, अच्छा जीवन जीकर और एक अच्छा समाज बनाकर। उनका अल्टीमेट गोल हमेशा यूडेमोनिया था, इंसानी जिंदगी का कामयाब होना, उसका फलना फूलना।
एकदम सही। चौथा, ये बात मुझे बहुत जरूरी लगती है, तरीका नतीजों से ज्यादा अहम है। देखिए, अरस्तु के कई साइंटिफिक निष्कर्ष, जैसे धरती ब्रह्मांड का केंद्र है,
वो तो अब गलत साबित हो गए।
हाँ, वो गलत साबित हो गए, लेकिन उनका असली टिकाऊ योगदान है वो सिस्टमैटिक तरीका जो उन्होंने सिखाया। चीजों की डेफिनेशन देना, उन्हें कैटेगरीज में बांटना, लॉजिकली आर्ग्यू करना, ये सोचने का तरीका, ये मेथड आज भी बेशकीमती है।
ये बात सही है, मेथड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और पांचवा शायद वही उद्देश्यवाद का आइडिया।
हाँ, टीलियोलॉजी, हर चीज का कोई ना कोई मकसद या टेलॉस होता है, ये उनकी पूरी सोच में फैला हुआ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन का, हमारे कामों का क्या उद्देश्य है, क्या रोल है।
ये कुछ कुछ भारतीय दर्शन में जीवन के लक्ष्य या पुरुषार्थ की खोज जैसा लगता है ना, हालांकि दोनों के अपने अलग मायने हैं।
हाँ, समानताएं ढूंढी जा सकती हैं, पर कॉन्टेक्स्ट अलग है। और इसी से जुड़ी आखिरी बात, इंसान और समाज का रिश्ता। अरस्तु बार बार कहते हैं कि हम अकेले पूरे नहीं हो सकते, हमारा विकास समाज में ही होता है।
ये बात तो भारतीय समाज में जो समुदाय और परिवार का महत्व है उसकी याद दिलाती है, जहां व्यक्ति को हमेशा समाज के एक हिस्से के रूप में देखा जाता है।
बिल्कुल, ये कुछ कोर ह्यूमन वैल्यूज हैं जो शायद हर जगह मिलती हैं।
बलंस की किताब अरस्तु के कुछ ऐसे विचारों या कोट्स को भी सामने लाती है जो उनकी सोच का निचोड़ है, मतलब ऐसी पंक्तियां जो सदियों बाद भी गूंजती हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे पहली, जो उनके मेटाफिजिक्स की शुरुआत है, सभी मनुष्य स्वभाव से जानना चाहते हैं।
All men by nature desire to know.
वाह, कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है। ज्ञान की प्यास, सीखने की इच्छा, ये हमारे अंदर है, ये कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, ये इंसान होने का हिस्सा है।
बिल्कुल।
दूसरी, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है. मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल. ये उनकी सोशल और पॉलिटिकल सोच की नींव है. ये याद दिलाता है कि हम अकेले टाकू नहीं हैं, हम इंटरडिपेंडेंट हैं और समाज में ही हमारी भलाई है.
तीसरा कौन सा?
तीसरा उनकी एथिक्स का सार. सद्गुण चरित्र की एक अवस्था है जो एक मीन में स्थित है जिसे व्यवहारिक ज्ञान वाला व्यक्ति निर्धारित करेगा.
बाप रे, ये थोड़ा लंबा है.
मतलब नेकी या वर्चू कोई पल भर का जोश नहीं बल्कि प्रैक्टिस से बनी पक्की आदत है और ये हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच का बैलेंस है जिसे समझदारी से प्रैक्टिकल विजडम से चुनना पड़ता है. वो बीच का रास्ता वाली बात.
समझ गई. और चौथा?
चौथा आर्ट्स पर. कला का उद्देश्य चीजों की बाहरी बनावट का नहीं बल्कि उनके आंतरिक महत्व का प्रतिनिधित्व करना है.
वाह, कला सिर्फ नकल उतारना नहीं है बल्कि चीजों के गहरे मतलब को सामने लाना है. ये तो कला को एक बहुत ऊंचा दर्जा देता है.
बिल्कुल.
तो अब असली सवाल, ये सब पुरानी बातें 2500 साल पुरानी आज हमारे किस काम की हैं? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में अरस्तु कहाँ फिट होते हैं?
अरे कई जगह फिट होते हैं. मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उनकी लॉजिक वाली बात, साफ सोचना, अपनी बात ठीक से रखना, दूसरों के तर्कों को समझना.
ये तो आज की इन्फॉर्मेशन वाली दुनिया में सुपर पावर जैसा है. फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन के जमाने में तो और भी जरूरी.
बिल्कुल. फिर वो गोल्डन मीन या स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत, ये जिंदगी में बैलेंस बनाने के लिए कितना जरूरी है.
हाँ, जैसे काम और आराम के बीच संतुलन,
या अपनी बात कहने और दूसरों की सुनने के बीच, खर्च करने और बचाने के बीच, हर चीज में अति से बचना और बीच का रास्ता खोजना, ये एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह है.
सही है. और वो कैरेक्टर वाली बात कि अच्छी आदतें डालने से ही अच्छा चरित्र बनता है.
हाँ, वर्चू इज अ हैबिट. हम जो रोज करते हैं धीरे धीरे वही बन जाते हैं. अगर कोई अच्छी आदत डालनी है, चाहे वो रोज थोड़ा पढ़ना हो या सेहत का ध्यान रखना हो या ज्यादा पेशेंस रखना हो, तो उसे लगातार करना होगा. ये पर्सनल ग्रोथ का एक सीधा सरल फॉर्मूला है.
ये तो बहुत मोटिवेटिंग है.
और कम्युनिकेशन के लिए उनके वो तीन सूत्र, लोगोस तर्क, पैथोस भावना और एथोस भरोसा.
हाँ, लोगोस पैथोस एथोस.
आज भी कोई भी अपनी बात असरदार तरीके से कहना चाहे, ऑफिस में प्रेजेंटेशन हो, दोस्तों से बातचीत हो या सोशल मीडिया पर कुछ लिखना हो, इन तीनों का बैलेंस साधना ही पड़ता है. तर्क भी हो, थोड़ी भावनाएं भी छुएं और लोग आप पर भरोसा भी करें.
बिल्कुल, इसके बिना बात बनती नहीं है.
और जीवन के उद्देश्य या टेलोस पर सोचना, हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसका असली मकसद क्या है, ये सवाल हमें अपनी प्रायोरिटीज तय करने और ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीने में मदद कर सकता है.
ये खुद से पूछना जरूरी है कि मेरी लाइफ का टेलोस क्या है, मेरे काम का टेलोस क्या है.
हाँ, और आखिर में वो समाज से जुड़ाव वाली बात. अरस्तु याद दिलाते हैं कि हमारी खुशी, हमारी यूडिमोनिया हमारे आसपास के समाज की सेहत से जुड़ी हुई है. ये हमें सिर्फ अपने बारे में सोचने से आगे बढ़कर अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने देश के लिए कुछ करने को प्रेरित करता है. हमारी भूमिका सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक भी है.
ये सारे पॉइंट्स तो वाकई आज भी बहुत रेलेवेंट हैं. तो कुल मिलाकर इस ज्ञान गोष्ठी से जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि जोनाथन बार्न्स की एक किताब हमें दिखाती है कि अरस्तु सिर्फ इतिहास का एक नाम नहीं है.
नहीं, बिल्कुल नहीं.
उनका दर्शन दुनिया को समझने और उसमें बेहतर ढंग से जीने का एक पूरा एक कोहेरेंट सिस्टम है. ये ऑब्जर्वेशन, लॉजिक और एथिक्स को सबको एक साथ लाता है और ये सिखाता है कि ज्ञान का असली मकसद सिर्फ जानना नहीं बल्कि इंसान का फलना फूलना यानी यूडिमोनिया पाना है.
हाँ, एकदम सही कहा. और बार्न्स हमें ये समझाते हैं कि अरस्तु की असली ताकत, उनकी जो लास्टिंग रिलेवेंस है, वो उनके दिए गए मेथड्स और सोचने के फ्रेमवर्क्स में है. भले ही उनके कुछ जवाब पुराने हो गए हों, पर उनके सवाल और सवाल पूछने का तरीका आज भी ताज़ा है. ये हमें टुकड़ों में सोचने के बजाय चीज़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर में देखने के लिए उकसाता है. ये दिखाता है कि हर चीज की एक भूमिका है, एक लक्ष्य है, एक टेलोस है.
और शायद यही वो सवाल है जिस पर हम आज भी सोच सकते हैं ना, कि अगर अरस्तु आज हमारे बीच होते तो वो हमारी इस टेक्नोलॉजी से भरी तेजी से बदलती दुनिया, हमारे सोशल मीडिया, हमारी अर्थव्यवस्था, इन सब का टेलोस यानी अंतिम उद्देश्य क्या बताते, ये सोचने वाली बात है.
बिल्कुल, एक गहरा सवाल छोड़ गए आप श्रोताओं के लिए.
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है. यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।